Shrimad Chaitanya Charitamrita, Madhya 8, text number 249.
Shri Chaitanya Charitamrita, Adhyay 8, Slok Sankhya 240.
Mukta Madhya Kon Jiva Mukta Kare Mani.
Mukta Madhya Kon Jiva Mukta Kare Mani.
Krishna Prema Yan Rase Mukta Shiromani.
Krishna Prema Yarase Mukta Shiromani.
Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu then inquired, out of all the liberated persons, who should be accepted as the greatest?
Anuvad. तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त मुक्त पुरुषों में से किसे सबसे महान माना जाए?
Ramananda Roy replied, he who has love for Krishna has attained the topmost liberation.
Ramanand Roy ने उत्तर दिया, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है.
So let us say the Guru Parampara pranams please.
Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Sahagana Jamsha Jai Krishna Karuna Sindhu Veena Vardhu Jagat Patai Gopesha Gopika Kanta
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त मुक्त पुरुषों में से किसे सबसे महान माना जाए?
Ramananda Roy replied, he who has love for Krishna has attained the topmost liberation.
श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है.
Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam 6.14.5 it is said, Muktanam api siddhanam narayana parayanam su durlabha pushanatma kos jivapi mahamune. O great sage, out of many millions of liberated persons, out of the millions who attain the perfection, he who is a devotee of Lord Narayan is very, very rare. Indeed, he is the most perfect and peaceful person.
Srimad Bhagavatam 6.14.5 mein kaha gaya hai, Muktanam api siddhanam narayan parayana sudurlabha prashantatma kotish vapi mahamune. Hey mahamuni, लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है. वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति होता है.
First, before getting deeper into the subject matter of the verse, I want to remind you of the context of this conversation.
श्लोक के गहराई में उतरने से पहले मैं आपको इसका संदर्भ बताना चाहता हूँ.
The talks between Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu.
महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच जो वार्तालाप है.
So Mahaprabhu is asking the questions.
महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं.
Ramananda Roy is replying.
श्री रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं.
At some point he says, My Lord, I don't know the answers to these questions. I don't know how to speak on these things.
एक बिंदु ऐसा आता है जब रामानंद राय महाप्रभु को कहते हैं कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता और मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से उत्तर दे रहा हूँ.
You are making me speak.
परंतु आप मुझसे बुलवा रहे हैं.
So for your pleasure, I must speak something.
इसलिए आपके आनंद के लिए मैं मुझे कुछ बोलना चाहिए.
Beyond my comprehension.
ये मेरे चिंतन के परे है.
Similarly, Sanatana Goswami is saying, attitude is saying, asking, inquiring questions for Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu is telling him basically within the heart exactly what to say.
और सनातन गोस्वामी भी ऐसा ही कहते हैं कि महाप्रभु मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरे हृदय में उत्तर प्रकाशित कर रहे हैं.
But the credit goes to the devotee.
परंतु जो इसका क्रेडिट है वो एक भक्त को जाता है.
This is very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
The same principles of the Bhagavad Gita.
भगवत गीता में भी यही सिद्धांत है.
Krishna says to Arjuna, you may declare boldly that my devotee never perishes.
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता.
First he covers his devotee with yoga maya.
वो अपने भक्त को योग माया से आच्छादित कर देते हैं.
After all, as an intimate friend of Lord Shri Krishna, Haribol, as an intimate friend of Lord Shri Krishna, there is no question of Arjuna being under Mahamaya.
भगवान श्री कृष्ण के इतने अंतरंग मित्र होने के कारण कोई प्रश्न ही नहीं था कि अर्जुन महामाया से आवृत हो.
He behaved like an ordinary man under the influence of yoga maya.
वो एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं योग माया के अंतर्गत.
Because Krishna doesn't just grab somebody off the street to discuss philosophy.
क्योंकि कृष्ण ऐसा नहीं है कि गली से किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आएंगे दर्शन की चर्चा करने के लिए.
Discuss with his beloved devotees, and he wants to see that they get the credit for whatever they say.
वो अपने प्रियतम भक्तों के साथ ये चर्चा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको इसका पूरा क्रेडिट मिले.
Therefore, Krishna says, "You may declare it boldly."
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप ये घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता. जिसका श्रेय है वो अर्जुन को जाता है. और इसका दूसरा देखने का तरीका ये है कि भगवान कृष्ण बहुत रहस्यमयी
है.
कभी कभार हो सकता है वे खुद वादा अपना पूरा ना करें. जैसा कि भीष्म देव जी के संदर्भ में आता है.
जय जय श्री राधिका ब्रह्मा जय. He promised not to take sides in the war at Kurukshetra.
उन्होंने ये वादा किया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर किसी की साइड नहीं लेंगे.
As the chariot driver of Arjuna, he was allegedly neutral.
और अर्जुन के जो सारथी होने के कारण वो एक तरह से बिल्कुल समान थे.
Of course, he wasn't really neutral.
वास्तव में वो समान नहीं थे.
Because of the love of the Pandavas.
क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं थे क्योंकि वो अपने भक्त से इतना प्रेम करते थे.
So although Bhima was externally the general for the Pandava army.
और हालांकि जो भीम जो पांडव की सेना थी उनके नेतृत्व कर रहे थे.
The real commander in chief was Krishna.
परंतु जो वास्तविक में जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो भगवान श्री कृष्ण थे.
Because they were fully surrendered to him, so basically he would tell him what to do.
क्योंकि वो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत थे तो भगवान उन्हें ये बताते थे कि आगे क्या करना है.
It's very significant that at the end of the battle of Kurukshetra.
अरे बहुत महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है जब उसका अंत हुआ.
all the Kauravas are dead except for except for Duryodhana.
सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी दुर्योधन के अलावा.
Who was hiding under the water?
जो पानी के नीचे छिपा हुआ था.
Using yogic power.
अपने योगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके.
He just wanted to chill out. He was going to retire.
और वो आराम करना चाहता था, रिटायर होना चाहता था.
Well, Yudhishthir Maharaj and Bhima and the Pandavas, they weren't going to settle for this. That Duryodhana, after butchering their son Abhimanyu, doing all these things, that he was just going to, now he's going to retire, peacefully in the water. No way.
परंतु भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव इस बात से संतुष्ट नहीं थे. ऐसा नहीं कि युद्ध के अंत में, क्योंकि उनके खुद के पुत्र की जिस प्रकार अभिमन्यु की उन्होंने हत्या की, कि वो अब वो आराम से रिटायर हो सके.
Poked at him with sharp words.
उन्होंने दुर्योधन को बहुत ही कड़े शब्दों में चुनौती
दी. Come out and fight, they said.
उन्होंने कहा कि बाहर निकलो और युद्ध करो.
He said, no, my fighting is over.
उसने कहा नहीं, मेरा युद्ध समाप्त हो गया है.
With fighting.
मैं युद्ध से मेरा सब पूरा हो गया.
I'm just going to go to the forest and take up the life of a sadhu.
अब मैं जंगल जाऊंगा और साधु का जीवन जीऊंगा.
Yudhishthir Maharaj says, so you are. We are not going to allow. Come out, you coward, you eunuch.
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें इस बात की सहमति नहीं देंगे.
You call yourself a kshatriya, but actually you're a eunuch, you're a coward.
कायर व्यक्ति, बाहर निकलो, वास्तव में तुम ही एक हीजड़े हो.
You're simply hiding from your enemies. What kind of kshatriya is that?
तुम अपने शत्रुओं से छिपकर बैठे हो. किस प्रकार के तुम योद्धा हो?
So they kept poking at him with sharp words.
और इस प्रकार से वो बहुत ही तीखे और कड़े शब्द उसकी तरफ फेंकते गए.
He couldn't take it anymore, so he came out of the water.
और दुर्योधन अब और अधिक सह नहीं पाया और फिर वो जल से बाहर निकला.
What happened next was very significant.
और आगे जो हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है.
Because Yudhishthir started talking to him.
कि युधिष्ठिर महाराज उससे बातचीत करना प्रारंभ करते हैं.
Without consulting Krishna first.
बिना कृष्ण की राय लिए.
You understand, Karuna? He started talking with Duryodhana, making basically what amounts to diplomacy and political position.
कि वो उससे बातचीत करना शुरू उन्होंने किया पॉलिटिक्स के टर्म्स में बिना कृष्ण.
Military strategy.
अलग अलग जो युद्ध करने की नीतियां हैं.
For the first time during the war,
पहली बार
without consulting Krishna,
बिना कृष्ण की राय लिए.
So independent action, very significant.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि बिना कृष्ण की राय लिए उन्होंने खुद से.
Is that a notebook you have there? You're not writing. Why you're not? You don't know these things. Then you have to write down. Otherwise, what's the point of the notebook?
कि महाराज निवेदन कर रहे हैं, आप ये चीजें नहीं जानते, आप इसको लिखिए, नहीं तो आपकी जो कॉपी है वो खाली की खाली रहेगी.
So Yudhishthir says, come out of the water.
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जल से बाहर निकलो.
Fight with us one on one. Choose any one of us.
हमसे युद्ध करो, किसी भी हमें से एक को चुन लो.
To fight with you.
आप तुमसे युद्ध करने के लिए.
Like a hero, like a kshatriya, not like a coward.
एक क्षत्रिय, एक हीरो के समान युद्ध करो, एक कायर के समान नहीं.
So then, finally, Duryodhana, he got it from his brief attempt to enter into Sattvagun. He was restored to Rajagun by the sharp words of Yudhishthir Maharaj.
तो भीम इस दुर्योधन इस प्रकार पानी से बाहर निकलते हैं और जो भी उनमें थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया था सतोगुण में आने का वो वापस रजोगुण में आते हैं.
So he said, none of you are fit to fight with me.
और उसने कहा कि तुम में से कोई भी सक्षम नहीं है मेरे से युद्ध करने के लिए.
Except for Bhima.
भीम को छोड़ के.
He's the only one fit to even try to fight with me.
वही एकमात्र ऐसा है तुम में से जो थोड़ी सी योग्यता रखता है प्रयास करने के लिए मेरे से युद्ध करने
का. So I'll fight with Bhima.
तो मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा.
They started fighting.
और इस प्रकार से उनका युद्ध प्रारंभ होता है.
And they were both trained in the club used by who?
और दोनों गदा की कला में माहिर थे और उनको किससे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था?
How many of you know?
आप में से कितनों को पता है?
Good. Okay. Who trained them and put Lord Balaram? Kijai.
Hari Bol. Balaram ji se unhe prashikshan.
So they were fighting, but the problem is they were equally matched.
तो क्योंकि दोनों का बलराम जी से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था और उनका शक्ति समान था तो बिल्कुल बराबर के योद्धा थे वो.
कृष्ण पुल्स युधिष्ठिर साइड.
भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को साइड में बुलाते हैं.
यू ब्लू इट.
कि आपने मरवा दिया.
Bhima can't win against you though. What are you thinking, you're a madman? You didn't consult with me, Narsis.
कि पागल व्यक्ति तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मेरे से कोई राय नहीं ली और अपने आप ये चुनाव कर लिया.
He acted independently. See, in the end, he acted independently, and it was problematic.
तो अंत में उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया और इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई.
And Duryodhana and Bhima were fighting. I don't know what for weeks or something.
और दुर्योधन और भीम फिर युद्ध कर रहे हैं पता नहीं कितने हफ्ते के लिए.
They were equally matched.
वो बिल्कुल बराबर के योद्धा थे.
So the fight wasn't going anywhere.
और इस युद्ध का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था.
Certainly, Bhima was unable to kill.
और निश्चित रूप से जो भीम है उनको मार नहीं पा रहे थे.
Duryodhana was too strong and too skilled with the club.
दुर्योधन भी क्योंकि उतना ही शक्तिशाली था और उतना ही
दक्ष था.
और फिर भगवान कृष्ण ने अपना जो बहुत ही प्रसिद्ध उनका ट्रिक है उसको निकाला.
See, Bhima is pretty smart. Bhima is pretty smart.
जब भीम है बहुत ही स्मार्ट है.
So Krishna just goes to his side. Krishna just goes like this.
तो भगवान कृष्ण उनको ये इशारा करते हैं.
The light bulb comes on.
और उनका जो दिमाग की बत्ती है
वो remembers. Oh yeah, his vulnerable spot that was not covered by the glance of Gandhari.
तो उन्होंने कहा जो दुर्योधन का शरीर का ऐसा अंग जो गंधारी ने जिन पे नजर जिनकी नहीं पड़ी कवर था वो.
Which had been covered by copas, which he was supposed to do. He was supposed to come naked in front of his mother.
तो वो क्योंकि कोपिन पहन के अपनी माता के समक्ष आए थे तो उनकी माता ने उन्हें बिल्कुल नग्न अवस्था में
बुलाया.
क्योंकि जब वो महल से जा रहे थे वहां पर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं.
Oh my dear, Duryodhana, pranams.
तो कहते हैं मेरे प्रिय दुर्योधन प्रणाम.
What are you doing? You're king. What is this nonsense?
आप एक राजा हो और ये क्या कर रहे हो?
You're walking naked in the palace. What crazy nonsense is this?
आप महल में नग्न अवस्था में घूम फिर रहे हो ये सब क्या पागलपन है?
Duryodhana is embarrassed actually.
तो दुर्योधन को बहुत शर्म आ जाती है.
He says, well, my mother told me to come see her naked, you know.
दुर्योधन ने बहुत ही झिझकते हुए शर्माते हुए कहा कि मेरी माता ने मुझे पूरी नग्न अवस्था में बुलाया है.
She says, what? What? You can't do that. You can't do that. You can't go see your mother naked. Come on. This is supposed to be civilization. You can't go in front of your mother naked. You're grown bad. You're not a little baby anymore.
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जाओगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते. ये किस प्रकार की सभ्यता है? तुम अब बच्चे नहीं रहे.
So then Krishna says, at least you have to wear copas.
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कम से कम कोपिन तो पहन लो.
So Duryodhana says, okay, okay. He's so embarrassed. Now he's completely humiliated. Krishna made an ass out of him.
तो दुर्योधन को इतनी शर्म आ गई थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरा एक गधा के समान व्यवहार किया, उसको गधा बना दिया, तो इतनी शर्म आ गई, उन्होंने कहा ठीक है
मैं
तो कोपिन पहन के वो गंधारी जी के समक्ष आते हैं और गंधारी जी की आंखें बंधी हुई थी।
दुर्योधन, is that you?
तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन क्या ये तुम हो?
Yes, mother.
हाँ माता।
But she did not ask him, did you come naked? Because you didn't disobey mother in Vedic culture.
परंतु
especially if you had a mother like Gandhari, like a super queen and like super chaste with mystic powers, you don't disobey somebody like that, just like the Pandavas didn't disobey Queen Kunti, you know.
परंतु गंधारी जी ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या तुम नग्न अवस्था में आए हो, पूर्ण नग्न अवस्था में आए हो, क्योंकि वैदिक सभ्यता में कोई भी अपनी माता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करता था, और विशेषकर अगर उनकी माता गंधारी जैसी हो जो इतने तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया हाँ माता मैं दुर्योधन।
So then she removed her, for the first time since she got married to Dhritarashtra, she removed the silk band across her eyes.
Dhritarashtra विवाह करने के बाद पहली बार उन्होंने अपने आंखों से वो रेशमी पट्टी को हटाया।
Extreme chastity, his whole body became immortalized.
और उनकी सतीव्रता शक्तियों के कारण उनका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल
But then she shouted immediately. She shouted, "Oh my son, what have you done?"
परंतु उन्होंने फिर चिल्लाया कि मेरे पुत्र, तुमने क्या किया?
I told you to come completely naked.
मैंने तुम्हें पूर्ण नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था।
But you were in copins.
परंतु तुम कोपिन पहने हुए हो।
What happened? What happened? How could you do this? How could you disobey your mother?
ये कैसे हुआ? किस तुमने मेरी अवज्ञा क्यों की?
Now, once again, he is really embarrassed.
तो दुर्योधन को एक बार दोबारा से बहुत शर्म आती है।
You know the saying, sheepishly, like with his head down low, he says, "Well, mother, I came across Krishna on the way over here."
तो उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपना सर झुकाते ये उत्तर दिया कि माता मैं आ रहा था परंतु रास्ते में मुझे कृष्ण मिले।
He told me I could not come naked before my mother and I had to wear these copins, so I put on the copins.
तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि मैं पूर्ण नग्न अवस्था में माता के समक्ष ना उपस्थित हूँ, कम से कम कोपिन तो पहन के
जाऊँ। Oh, my son is finished.
और गंधारी को उसी क्षण पता लग गया था कि मेरे पुत्र
Because it's not the will of Krishna. I mean, she knew who Krishna was, but they couldn't swear to her. So just like they lived to fight devotees, even in our own society, how many, thousands of neophyte devotees that can't surrender? Just see. It's not, so here we have, Queen Kunti knows Krishna's spiritual devotee, but can't surrender. The same thing with Dhritarashtra. They knew who he was, but couldn't surrender.
क्यों गंधारी जी को पता चल गया कि इनकी युद्ध में विजय प्राप्त होने का कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि पांडव विजय हो। हालांकि गंधारी उन जानते थे कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वह पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पा रहे थे।
So then she was heartbroken because she knew he was doomed.
तो उनका हृदय पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उन्हें
So back to the battlefield where Duryodhana and Balaram have been, fighting it out with clubs and nobody's winning.
तो वापस उस युद्ध भूमि पर चलते हैं जहां पर दुर्योधन और भीम युद्ध कर रहे हैं।
And Lord Balaram had he'd come back from pilgrimage. Remember after he killed the Shuddha. Killed the Acharya who was sitting on the Vyasasan, Romarsan Sutta.
तो बलराम जी क्योंकि तीर्थ यात्रा से उस समय वापस आते हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, रोमहर्षण सूत का जो वध करते हैं।
So Lord Balaram was returning from his pilgrimage.
तो बलराम जी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं।
When he appeared at the battlefield, it was a tense moment because everybody knew that Duryodhana was a friend of Balaram had been trained in a club by him, so there was some tension. What's going to happen now? What if Balaram starts fighting on the side of the Kauravas? Then what? There was some tension.
तो जब बलराम जी वहां पर उपस्थित होते हैं तो एक चिंता का माहौल छा जाता है, क्योंकि उन्हें वो जानते थे कि बलराम जी ने ही दुर्योधन को प्रशिक्षित किया है और दुर्योधन और बलराम जी मित्र हैं।
So then when Krishna made a signal, just tapped on his thigh with his fingers to remind Bhima, and Bhima, being very intelligent, got the message.
क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि कहां पर प्रहार करो और भीम को भी वह संदेश मिल गया।
So then he took his club and he struck Duryodhan below the waist.
दोनों ने अपनी गदा उठाई और दुर्योधन को कमर से नीचे प्रहार किया।
Hitting in the spot that was unprotected by Gandhari's glance.
उसी स्थान पर उन्होंने प्रहार किया जहां जो गंधारी की दृष्टि से अवाक रह गया था।
And this way, this way, Bhima broke both his thighs and he fell down. He could not stand anymore. No question of fighting. Both his thighs are broken. Now he can't stand even.
तो इस प्रकार से दुर्योधन ने उनकी जो दोनों थाइस थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। वो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो युद्ध का तो सवाल ही नहीं उठता।
But Lord Balaram is watching this.
परंतु बलराम जी देख रहे थे।
You know, his eyes are always reddish color.
और उनके जो नेत्र हैं, वो लाल रंग के होते हैं।
But he becomes angry. I mean, you know, they become even red hot. You know, like to.
और जब उन्हें क्रोध आता है, तो वो जो लाल रंग है, और गाढ़ा हो जाता है।
He starts shouting.
और उन्होंने चिल्ला के कहा,
Bhima, you rascal, you nonsense.
कि भीम, धूर्त मूर्ख व्यक्ति।
Oh, you great violator of Kshatriya Dharma.
तुमने
शेरबाजू।
तुमने क्षत्रिय धर्म को तोड़ा है,
तुमको
धिक्कार है।
rules.
तुम क्षत्रिय नियमों को नहीं जानते।
You struck him below the waist. You know that is undharma. You know it.
तुमने कमर के नीचे प्रहार किया, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
So Lord Balaram took up his club, but he starts charging towards Bhima. You know, he's going to kill him.
तो बलराम जी ने अपना गदा उठाया और भीम की तरफ दौड़े।
He's very angry because Lord Balaram was indeed very fond of Duryodhan.
तो वो बहुत क्रोध में थे, क्योंकि जो दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था।
But Krishna restrained him.
परंतु कृष्ण ने बलराम जी को रोका।
Said, you want to speak about dharma? What about, you know, when Draupadi was being disrobed and no, and even Bhishma and Dronacharya remained silent? Where was dharma then?
तो आप धर्म की बात करते हो, तब वो धर्म, अगर धर्म की चर्चा करनी है तो वो धर्म तब कहां था जब द्रौपदी को भारी सभा में वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया और भीष्म द्रोणाचार्य भी चुप रहे।
What about the butchering of Abhimanyu by about what, six men,
you know, against one?
Where was dharma then? So Krishna tells about how many rules have been broken.
जब छह योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी, तो तब धर्म कहां था? तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारे ऐसे चीजें उदित की जहां पर कौरवों ने नियम तोड़ा था।
Anyway, so Arjuna, he got the credit for asking questions in the Bhagavad Gita and reaching conclusions.
अर्जुन को इस प्रकार से श्रेय प्राप्त हुआ।
And Ramananda Roy is getting the credit here for being the puppet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और रामानंद राय को वही श्रेय यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, एक कठपुतली होने का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों में।
You as love for Krishna has attained the topmost liberation.
जो कृष्ण प्रेम से युक्त है, उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है।
Now this verse that Prabhupada has quoted many, many times.
ये श्लोक जो श्रील प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं, कई कई बार ये श्लोक उद्धृत किया है भागवतम से।
मुक्तानम अपि सदानम नारायण परायण सुजुड़बा पुशंतात्मा कोटिश्वपे महामुने। ओ ग्रेट सेज, ऑफ द मेनी मिलियंस ऑफ लिबरेटेड पर्सन्स एंड ऑफ द मिलियंस हु हैव अटेन्ड परफेक्शन, ही हु इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण इज वेरी वेरी रेयर. Indeed, he is the most perfect and peaceful person.
हे महामुनि, लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है, वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति होता है।
So in self-realization, generally, those on the path of self-realization, they're after mukti.
साधारणतः जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर है वो मुक्ति के पीछे है.
Mukti means liberation.
मुक्ति का अर्थ है मुक्ति.
But except for the devotees, generally the jnanis, they want to merge into Brahman. That is their conception of liberation.
भक्तों के अलावा जैसे ज्ञानी वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं.
ये उनके मुक्ति का यही परिभाषा है.
वो अपने स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से छुटकारा प्राप्त करके
they want शांति,
वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं.
So they think they have to leave behind the gross body, leave behind the subtle mind.
तो अपना स्थूल शरीर पीछे छोड़कर अपना सूक्ष्म मन को छोड़कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं. तो उनका जो मुक्ति का परिभाषा है यहीं तक सीमित है.
भगवान says, O great sage of the many millions of liberated persons.
परंतु श्रीमद् भागवतम कहता है, हे महामुनि, लाखों मुक्त पुरुषों
and of the millions who have attained perfection,
तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में
He was a devotee of Lord Narayan is very, very rare.
Narayan ka bhakt atyant durlabh hota hai.
Same thing is stated by Krishna in the Bhagavad Gita.
To Bhagavan Shri Krishna Bhagavad Gita mein yehi baat keh rahe hain.
Everyone please, Bahanam Janmanamande Gyanamamandupadyante Pasudeva Sarvanidhi
Samahatma Sudhidaha.
Again, that was weak.
दोबारा से जोर से
जन्म अंते ज्ञानम उपद्यन्ते वसुदेव सर्वनिधिशः. So just see how that same word Sudhirtava is there.
तो आप देखिए किस प्रकार से वही श्लोक दोबारा बोला गया.
Because Sudhirtava is translated as very, very rare.
Sudurlabha अर्थात बहुत बहुत ही दुर्लभ.
Who even tries to be a devotee of the Supreme Personality of Godhead? Who just tries?
जो भगवान का भक्त बनने का प्रयास भी कर रहा है, सिर्फ प्रयास.
Like all of you are trying, all of us are trying.
हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का.
Krishna. And then, according to our adhikar, all of us have different levels of accomplishment in Krishna consciousness.
Krishna Bhavanamrit में हम सबके अलग अलग अधिकार हैं कि हमने कितनी योग्यता प्राप्त की है.
But at least we're trying.
परंतु कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं.
And you know, whatever small effort is made.
और कोई भी छोटा प्रयास जो किया जाता है.
By a jiva.
एक जीव के द्वारा.
Krishna appreciates.
कृष्ण उसकी सराहना करते हैं.
It's like For several years, there were these young guys coming here doing dancing, you know.
उदाहरण के लिए कई वर्षों तक यहाँ पर कोई युवक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं.
They were of a gay persuasion.
तो उनका जो प्रवृत्ति था थोड़ा गे प्रकार का था.
You remember?
समलिंगिक.
The guys would come. They were good dancers, you know. Mudras and hand motions and dancing Bharat Natyam style like that, you know, guys, you know, young men, you know. It was a little gay club, you know. Remember?
तो कुछ जो पुरुष हैं इस प्रकार से मुद्राएं करके नृत्य करते थे.
Personally, I enjoyed watching them dance. I'm not joking. I liked watching them dance because I knew they were dancing for Krishna. So what if they're off the charts with sense gratification. So what?
परंतु एक रूप से देखा जाए वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ऐसा नृत्य कर रहे थे.
Now they're right.
प्रसन्नता के लिए.
Right is situated because they're dancing for Krishna.
और वो कृष्ण के लिए नृत्य कर रहे थे इसलिए ठीक रूप से situated थे.
Krishna will never forget. So भगवान कृष्ण इसको कभी नहीं. You know, the legal saying is throw the book at him, you know. That's what they say in America. You know, throw the book means give him maximum punishment. The prosecutor says, roast him.
तो जब वो यमराज के समक्ष जाएंगे, अमेरिका में कहावत है कि उनको पुस्तक दिखाओ, लीगल कोर्ट में कहते हैं. उनके ऊपर पुस्तक फेंको. जितना भी उसका किया,
उसका दिखाओ. This is pretty bad. These guys were very sinful. Okay.
तो वहाँ पे जो भी इनकी वकालत करेंगे उनको परिणाम दिया जाएगा कि इनको उबालो.
Anyone have anything to say in their defense?
तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं. तुम्हें अपने
ready to read
बचाव के लिए कुछ कहना है?
Ready to read about maximum punishment?
या तैयार है सर्वोच्च दुर्गति के लिए punishment?
Yes, my lord, defense attorney says.
तो जो उन लोगों का वकील है वो हाथ खड़ा करेगा कि हाँ मुझे कुछ कहना है इनके बचाव के लिए.
You have something good to say about these men? They were active homosexuals.
तो यमराज जी उनसे पूछेंगे कि तुम्हें इनके बचाव के लिए कुछ अच्छा कहना है?
Yes, my lord, I do have something good to say about them.
हाँ, my lord, मैं कुछ कहना चाहता हूँ.
Try to understand. Yamaraj is a devotee.
देखिए समझने का प्रयास कीजिए. यमराज एक भक्त है.
If someone can say something good about a sinful person brought before him, that makes him happy.
अगर कोई उनके समक्ष इतने पापी व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा कहे इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है.
Somehow they should get freed from the shackles of darkness of ignorance.
किसी न किसी प्रकार से वो अंधकार से छुटकारा प्राप्त करें.
पर दुख दुखी because he is Vaishnav.
पर दुख दुखी क्योंकि वो वैष्णव है.
Also, what you have to say in their defense, he's glad to hear somebody has something positive.
तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब उन्होंने ये सुनेंगे कि इनके लिए वो कुछ अच्छा कहना चाहते हैं.
Well, my lord, they used to go to ISKCON temple.
Hey, my lord, वो ISKCON मंदिर जाते थे.
Don't think Yamaraj is no fool. He's no fool. You think Yamaraj doesn't know what ISKCON is?
तो यमराज जी बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति है. तो yes, आपको क्या लगता है कि यमराज नहीं जानते ISKCON मंदिर क्या है?
ISKCON temple? He knows all about ISKCON.
और वो इतने चौकन्ने होके पूछेंगे क्या ये ISKCON मंदिर जाते थे?
He knows all about each and every one of you also.
वो ISKCON मंदिर के बारे में सब जानते हैं और वो आप प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानते हैं.
Whether you're following Acharya or not, he knows.
कि
he's monitoring. Yes, he is. We're under surveillance.
Acharya.
You see these surveillance cameras here?
आप आचार्य का पालन कर रहे हैं, उनके पद दिखाए पद पे चल रहे हैं नहीं? तो यमराज जी सबको देख रहे हैं जैसे आप यहां देखते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं.
You're under the illusion that you're going some computer monitor somewhere. Think again.
तो अगर आप किसी भ्रम में हैं कि वहां पे भी कोई ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है तो दोबारा सोचिए.
Actually they're going to Yamaraj.
तो वास्तव में यमराज के पास जा रहे
हैं. He's keeping an eye on us, hoping that we'll stay fixed on the path of bhakti.
वो हम पर ये दृष्टि लगाए हुए हैं कि हम भक्ति के पथ पर बिल्कुल दृढ़ रहे.
He says, oh, they went to an ISKCON temple, really?
क्या वास्तव में ISKCON मंदिर गए थे ये?
Well, that's amazing. So what happened? What happened?
ये बहुत ही अद्भुत है. क्या हुआ वहां पर? क्या किया?
Defense attorney says, oh, they used to dance very beautifully in front of the deities.
तो जो उनका डिफेंस का वकील होगा वो कहेगा कि वो विग्रहों के समक्ष बहुत ही सुंदर रूप से नृत्य करते थे.
They used to chant and they used to dance very sweetly in front of the deities.
तो भगवान का नाम भी लेते थे और उनके समक्ष नृत्य भी करते थे.
Really, Yamaraj says, really? Remember, you're under oath here, you know.
तो यमराज जी कहेंगे क्या सही में?
Yes, Maharaj, I swear. They came when they danced beautifully in front of Radha and Krishna.
तो कहा हाँ मैं कसम खा कर कहता हूँ कि वो यहाँ गए थे और राधा कृष्ण के समक्ष बहुत ही सुंदर नृत्य किया था.
In front of Radha and Krishna they were dancing?
राधा कृष्ण के समक्ष वो नृत्य कर रहे थे.
And chanting the holy name, Mahamantra?
और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कर रहे थे महामंत्र का?
Yes, my lord.
Yes, my lord.
Yes, at the Punjabi Bagh, Shishi Radhika Raman Krishna Balaram Mandir they were dancing.
पंजाबी बाग ISKCON मंदिर है राधिका रमन कृष्ण बलराम मंदिर वहां पर वो डांस कर रहे थे.
Yamaraj goes, oh.
तो यमराज जी इस प्रकार कहेंगे.
We have to handle this case very carefully.
हमें बहुत ही सावधानी से इस केस को हैंडल करना चाहिए.
As Jagannatha Swami used to say, you know, in the old When I first came to India in 94, of course '74, of course there were no computers in India yet. You know, everything, you went into a bank, you know, and the book was like a half a meter thick, you know, their handwriting, everything, and you know, the telephones were hello, you know, I mean, you can imagine, you guys, you know, young guys, you can imagine the technology of India in 1974. When I first came here in this lifetime.
जैसा कि जयप्रदाका स्वामी महाराज बताते हैं कि जब यहाँ पर आए थे 1974 की बात बता रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं उस समय टेक्नोलॉजी का क्या स्तर था. तो बताते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक में कम से कम आधा मीटर चौड़े रजिस्टर हुआ करते थे और वहां पे फोन की घंटी बजती थी और जिसपे वो हेलो हेलो करते थे, कोई आवाज नहीं आती थी.
There's a magical story from these old phones in India, you know, hello, like 1800s technology. No, I'm not joking, that's what it was. I mean, I don't know if people have said, I think by the time you were born, there were already modernized phones. But when I came in 1974, hello, can you hear me? Hello. That's the way it was in the US in the 1800s, you know, 1800s technology.
1974 में महाराज बता रहे हैं, जब आप पहली बार भारत आए थे इस जीवन में, तो जो टेक्नोलॉजी थी यहाँ भारत की, वो अमेरिका में 1800s में ऐसा वहाँ पे टेक्नोलॉजी हुआ करती थी.
There's one amazing story about the head of one of the Gorimath temples wanted to buy some property in Vrindavan.
तो एक ऐसी घटना है कि गौड़ियामठ मंदिर में जो प्रॉपर वृंदावन में थे,
so the phone wasn't working because it was old fashioned phone system.
और स्वाभाविक रूप से वहां का जो फोन है कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत पुराना था.
So he could not call the real estate agent to complete the transaction, pending transaction.
He could not call to
real estate agent.
तो वो अपनी कॉल नहीं कर पाए जो एक रियल एस्टेट एजेंट था उसको.
All of a sudden, the phone rang, ding-ling, the phone had been down, whole phone system had down. And then ding-ling, phone rings.
वो transaction अपनी पूर्ण नहीं कर पाए थे और बीच में फोन कट गया.
Because the real estate agent was calling him, saying, we have your temple ready now. Let's complete this deal. So they just took a few minutes, completed the deal over the phone.
तो रियल एस्टेट एजेंट ने कॉल किया कि आपका मंदिर तैयार है और फोन पर ही कुछ उन्होंने ट्रांजैक्शन किया.
And after they completed the deal, clunk, the phone lines died.
और जैसे ही वो डील कंप्लीट हुई, बिल्कुल कट, फोन कट गया तुरंत.
Anyways, so they were writing in those days by hand.
उन दिनों में वो हाथ से लिख रहे थे.
So Chitragupta, you know, he's the secretary to Yamaraj, you know.
जो चित्रगुप्ता है वो सेक्रेटरी है यमराज के.
The way Jayaprataka Swami put it, you know, there used to be, you have these books and then you make a mistake, there was this whiteout, this little bottle of white sticky ink and with a little brush in it, you take it out and you would write on top of the paper and then you would rewrite something when there was a mistake.
तो जरा जयप्रताप स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो आए और ऐसा उन्होंने देखा रजिस्टर रहते थे, तो उसमें अगर कोई गलती हो जाए या कुछ चेंज करना हो तो व्हाइट फ्लूइड आता है, तो उसके ऊपर वो फ्लाइट व्हाइट फ्लूइड चलाते थे.
So Jayaprataka Swami was saying, Chitragupta had to have a lot of, just when he thought he got it all down and okay, this guy is doing okay, we got it all down, and then the defense attorney comes and says, what he chanted Hare Krishna.
तो चित्रगुप्त पूरी इतनी मेहनत करके उसका पूरा खाता मेंटेन करते हैं, सब उसके बारे में लिखते हैं, और कोई डिफेंस का लॉयर आता है और ये अपील करता है कि इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया है.
So Jayaprataka Swami is saying, he has to sit there with the white out and write, what a pain, I'm not going to rewrite this whole thing.
तो जो चित्रगुप्त है उसका काम इतना बढ़ जाता है कि उसे व्हाइट फ्लूइड लेके सारी चीजें मिटा के दोबारा से एडिट करना पड़ता, दोबारा से लिखनी पड़ती.
So that's position of devotee.
तो ये एक भक्त की स्थिति है.
सुदुर्लभा,
बहुत ही दुर्लभ.
All of you here are included in this verse.
आप सब यहाँ पर जितने उपस्थित हैं श्लोक में सम्मिलित हैं.
This verse and this quote by Srila Prabhupada from Bhagavatam.
ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी ने जो उद्धृत किया है.
Try to understand, it's not just for Paramahansa.
ये समझने का प्रयास कीजिए सिर्फ परमहंसों के लिए नहीं है.
I'll read it again. We'll close on this. We'll complete on this. O great sage of the many millions of liberated persons and of the millions who have attained perfection.
हे महामुनि लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में.
He was a devotee of Lord Narayan is very, very rare.
नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है.
So all of you are very, very rare.
आप सब बहुत ही दुर्लभ
हैं.
सुदुर्लभ.
And Krishna says, Mahatma.
और भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा.
Such great souls are very, very rare.
ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं.
But the next statement also applies to everybody, even if I'm sitting here. The next statement about Bhagavan, indeed. He is the most perfect and peaceful person. Most perfect person who's just trying to be a devotee.
और जो अगला इसका वाक्य है वो भी उतना ही लागू होता है कि वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति होता है. अर्थात जो भक्त बनने का प्रयास भी कर रहा है वो अत्यंत पूर्ण है.
So, any questions, comments?
इसका कोई प्रश्न या
corrections? Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Granjana Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Sri Sri Radhikarama Krishna Balaram ki jai. Nitya Gopinanandi Hari Hari Bolo.
Zolas Bhakti Madhur Goswami Maharaj ki. Sri Vrindavan Das Thakur.